आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 79,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री ने रक्षा खरीद नियमावली 2025 भी जारी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निशमन विभाग की समीक्षा की, कहा विभाग को आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू ऑपरेशन और आपात सेवाओं के लिए किया जाए तैयार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन के वॉर रूम से की विशेष रेलगाड़ियों की समीक्षा। छठ पूजा से पहले रेलवे की तैयारियों पर भी हुई चर्चा। और देश भर में नहाए खाए के साथ कल से होगी छठ पर्व की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने कल सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 79,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी। एक रिपोर्ट।
रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सेना के लिए नाग मिसाइल सिस्टम, ग्राउंड बेस्ड मोबाइल ELINT सिस्टम और मटेरियल हैंडलिंग क्रेन के साथ तीव्र गति से चलने वाले वाहनों की खरीद के लिए अनुमति दी गई। नौसेना के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स 30mm नेवल सरफेस गन, एडवांस्ड लाइट वेट टॉर्पीडो, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और 76mm सुपर रैपिड गन माउंट के लिए स्मार्ट गोला बारूद की खरीद को भी स्वीकृति दी गई। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
रक्षा मंत्री ने कल ही नई दिल्ली में रक्षा खरीद नियमावली 2025 भी जारी किया। नई नियमावली 1 नवंबर से प्रभावी होगी। इससे तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए की राजस्व खरीद संभव हो जाएगी। रक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नई नियमावली प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी और कार्य प्रणाली में एक रूपता लाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अग्निशमन विभाग की समीक्षा के दौरान विभाग की संरचना को अधिक सशक्त, आधुनिक और संवेदनशील बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि फायर सर्विस को केवल आग बुझाने तक सीमित न रखकर इसे आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू ऑपरेशन और आपात सेवाओं के समेकित स्वरूप में विकसित किया जाए। एक रिपोर्ट।
अग्निशमन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक रीजन में स्पेशलाइज्ड यूनिट गठित की जाए जो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल दुर्घटनाओं और सुपर हाईराइज बिल्डिंग में आपात परिस्थितियों से निपटने में सक्षम हो। उन्होंने प्रत्येक जनपद में अकाउंट कैडर स्थापित करने और राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय में अतिरिक्त पद सृजित कर प्रशिक्षण और अनुसंधान को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। साथ ही एक्सप्रेस वे पर बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पर फायर टेंडर सहित एक छोटी फायर चौकी स्थापित करने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से शरद मिश्र।
प्रदेश सरकार ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों को तत्काल अपने मूल तैनाती स्थल पर वापस जाने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इससे संबंधित जारी आदेश में कहा है कि शिक्षक व अन्य अधिकारी अपने मूल तैनाती पर जाने के साथ ही भविष्य में बिना शासन की अनुमति के कहीं और संबद्ध न किए जाएं। वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में नए GST सुधार से लोगों को मिल रहे लाभ को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
नए कर ढांचे के तहत 350 सीसी तक के दुपहिया वाहनों पर GST दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसी तरह 1800 सीसी से कम इंजन वाले ट्रैक्टरों पर अब केवल 5% GST लग रहा है, जबकि पहले ये दर 12% हुआ करती थी। वहीं सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए GST 2.0 के अंतर्गत 10 से अधिक सीटों वाले बसों पर GST दर घटाकर 18% कर दी गई है। दूसरी ओर मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1200 सीसी तक की पेट्रोल कारों और 1500 सीसी तक की डीजल कारों पर कर को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कल नई दिल्ली में रेल भवन के वॉर रूम से विशेष रेलगाड़ियों की समीक्षा की। उन्होंने छठ पूजा से पहले रेलवे की तैयारियों पर भी चर्चा की। त्योहारों के दौरान बढ़ती यात्रियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए वॉर रूम की स्थापना की गई है। रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में 3 स्तरीय वॉर रूम हैं। यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए डिवीजन, जोनल और रेलवे बोर्ड स्तर पर वॉर रूम बनाए गए हैं। पर्व को देखते हुए नियमित ट्रेन सेवाओं के अलावा 4 दिनों के दौरान प्रतिदिन औसतन 300 विशेष रेलगाड़ियों के साथ कुल 1500 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। इस बीच पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के DRM गौरव अग्रवाल ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से रोजाना 30 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।
रोज 30 से 40 ट्रेन एक्स्ट्रा चला रहे हैं, जो दिवाली का बाद वाला सैटरडे संडे होता है और छठ से पहले वाला और छठ के बाद वाला वीकेंड पे करीब 40 के आसपास ट्रेनें चल रही हैं, और जो रेस्ट ऑफ द वीक डेज में करीब 30 ट्रेनें पर डे एक्स्ट्रा चल रही हैं। गोरखपुर में हमने 5 होल्डिंग एरिया बनाए हैं, जिसमें करीब 5 से 6 हज़ार आदमी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 24 आवर्स बैठ सकते हैं। पैसेंजर्स के बैठने के लिए, लेटने के लिए, सोने का अरेंजमेंट भी है।
यात्रियों ने भी त्योहारों पर बेहतर अनुभव के लिए रेलवे की विशेष व्यवस्थाओं की सराहना की है। इटावा के चंद्रवीर सिंह ने कहा कि स्पेशल ट्रेनों के चलने से लोग सुगमता से यात्रा कर रहे हैं।
जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, का फायदा यात्रियों को भी मिल रहा है और भीड़ नहीं है, मारामारी कम है। ये सरकार का बड़ा सराहनीय कदम है, जो कि यात्रियों के लिए बहुत अच्छा है। आराम से आदमी आ जा पा रहा है।
छठ पर्व को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां तेज हो गई हैं। छठ पूजा की शुरुआत कल नहाए खाए के साथ होगी। 26 अक्टूबर को खरना होगा और 27 अक्टूबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। 28 अक्टूबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का समापन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 अक्टूबर को लखनऊ में सूर्य को पहला अर्घ्य देकर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के समय में बदलाव किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जारी शीतकालीन समय सारणी के अनुसार श्रद्धालु अब सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक श्री रामलला के दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड के श्री केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट कल पारंपरिक रीति रिवाजों और मंत्रोच्चार के साथ बंद कर दिए गए। एक रिपोर्ट।
कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की पंचमुखी चल उत्सव विग्रह डोली धाम से अपने शीतकालीन गद्दी स्थल उखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान कर गई। इसके बाद अगले 6 माह तक बाबा केदार के भक्त उखीमठ में अपनी आराध्य के दर्शन कर पूजा अर्चना कर सकेंगे। वहीं उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद माँ यमुना की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल खरशाली के लिए रवाना हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने के अवसर पर श्री केदारनाथ धाम पहुंचकर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
आज विश्व पोलियो दिवस है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य कर्मियों और नागरिकों का अभिनंदन किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि पोलियो मुक्त भारत हमारे सामर्थ्यवान स्वास्थ्य कर्मियों, जन सेवकों और जागरूक नागरिकों के भगीरथ प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि दो बूंद जिंदगी की मंत्र ने पोलियो को हराने के साथ ही स्वस्थ भारत, सशक्त भारत की नींव रखी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 3 दिनों के बाद अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के गिरावट की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 3 दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। साथ ही 28 अक्टूबर तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 79,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री ने रक्षा खरीद नियमावली 2025 भी जारी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निशमन विभाग की समीक्षा की। कहा, विभाग को आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू ऑपरेशन और आपात सेवाओं के लिए किया जाए तैयार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन के वॉर रूम से की विशेष रेलगाड़ियों की समीक्षा। छठ पूजा से पहले रेलवे की तैयारियों पर भी हुई चर्चा। और देश भर में नहाए खाए के साथ कल से होगी छठ महापर्व की शुरुआत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।